नमस्ते साथियों, सुरक्षा वाणी पर पिछले हफ्ते आपने सुना कि कैसे किरण ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से मीरा को उसके पति की हिंसा से बचाया। साथियों, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, हिंसा बच्चों और महिलाओं पर एक गहरी छाप छोड़ देती है जिसका असर सारी जिंदगी रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में घरेलू हिंसा के खिलाफ कुछ कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर महिलाएं और बच्चे इस हिंसा के शिकार तो होते हैं लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ऐसे में जरूरी है कि हम एक समुदाय के रूप में आगे आएं और उनकी मदद करें। आइए आज की कहानी में देखते हैं कैसे समुदाय के लोगों ने मीरा और उसके परिवार पर हो रही हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश की।
नमस्ते गोवर्धन भाई, आज सुबह सुबह यहाँ?
हाँ रमेश भाई, कई दिनों से हम लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे।
हाँ हाँ कहिए ना भैया।
रमेश भाई सब ठीक है ना? कल रात आपके घर से काफी आवाज आ रही थी, आप काफी गुस्से में लग रहे थे, हमें मीरा बहन और बच्चों की चिंता हो रही थी और आपकी भी।
देखिए देखिए, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, मगर घर परिवार में ये सब बातें आम है और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे आपसी मामले में गाँव वाले ना ही पड़े तो बेहतर है। और मीरा के नखरे तो आप जानते हैं, खामखा जुबान लड़ाती है मुझसे, उसको चुप रहने को कहने के बावजूद भी।
ये आपके घर का मामला तो है पर साथ ही हमारा भी, क्योंकि हमें आप सबकी फिक्र है। मैं समझता हूँ कि शायद आपको हमारी ये बात पसंद नहीं आएगी पर बात जरूरी है, आपके शुभचिंतक होने के नाते सोचा आपसे बात कर लें। आपकी बेटी चिंकी आज फिर स्कूल नहीं गई, आपको पता है आपके इस रोज रोज की नाराजगी और मारपीट का आपके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। मैं आपको बिल्कुल समझता हूँ, मैं भी पूनम पर हाथ उठाता था पर फिर मेरे पिताजी ने मुझसे बात की और मुझे समझाया कि ये मेरे अंदर के गुस्से को निकालने का तरीका है और आसपास सब इसको पूनम की ही गलती कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे गुस्से की वजह से घर में किसी को भी शांति नहीं मिलती थी।
रमेश भाई आप सुलझे हुए आदमी हैं, परिवार का सोचिए अपने। क्या आपको पता है जो बच्चे घर पर हिंसा देखते हैं उनका पढ़ाई लिखाई या खेल कूद किसी भी चीज में मन नहीं लगता, ना उनका पूरा विकास हो पाता है। ऐसा माहौल ना उनके लिए ठीक है, ना भाभी और ना आपके लिए। और आजकल पुलिस और सरपंच समुदाय के लोगों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून की जागरूकता भी बढ़ा रही है।
देखिए रमेश भाई, अगले बार आपको गुस्सा आए ना तो आप मुझे फोन कर लेना या फिर टहलने निकल पड़ना, कितने सारे तरीके हैं अपने गुस्से को शांत करने के, मन भटकाने के। अब आप ही सोचिए, अभी तो मीरा भाभी हर रोज इस हिंसा को सह रही हैं, कल को वो कोई कड़ा कदम उठाने को भी मजबूर हो सकती हैं।
गोवर्धन भैया देखिए, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, यूं आप लोग मुझे पुलिस और कानून की धमकी मत दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोबारा शिकायत का मौका न मिले, मैं अपने बर्ताव में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूँगा।
ठीक है रमेश भाई, हमें भी आपसे यही उम्मीद है।
तो साथियों, क्या लगता है आपको, क्या गांव वालों की फटकार सच में रमेश को बदल पाएगी या वो फिर से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हिंसक बर्ताव करेगा? खैर ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। साथियों, सालों से ऐसा देखने को मिला है कि घरेलू हिंसा बच्चों के मन में तनाव, डर और भ्रम को जन्म देती है। वो बार बार अपने घर के माहौल के बारे में सोचते रहते हैं और डर डर के जीना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे और महिलाएं तो इस हिंसा का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। शारीरिक हिंसा से गहरी चोट भी लग सकती है और तो और किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। घरेलू हिंसा के पीड़ित बच्चे घर से भागकर नशे की लत में फंस जाते हैं या बिना सोचे समझे कोई गलत काम उठा लेते हैं। ऐसे बच्चे आगे जाकर खुद कभी अपने परिवार के साथ एक अच्छा और स्वस्थ रिश्ता नहीं निभा पाते। एक समुदाय के तौर पर हिंसा से पीड़ित बच्चों से बात करें और उन्हें समझाएं कि हिंसा कभी सही नहीं होती, भले ही हिंसा करने वाला उनका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो और ना ही वो और ना ही कोई और इस हिंसा का जिम्मेदार है। इसके साथ ही इन बच्चों को समझाएं कि उन्हें खुद को हिंसा से दूर और सुरक्षित रहना होगा और अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी होगी। साथियों, क्या आपने या आपके समुदाय में किसी और ने आगे आकर घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया है? अगर हाँ तो कैसे, हम सुनना चाहते हैं। अगर आपके इस मुद्दे से जुड़े कोई सवाल हो तो उन्हें भी हमारे साथ साझा करें। अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए फोन में दबाएं नंबर 3 का बटन। नमस्ते।